আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইকতারাবা লিন্নাসি হিসাবুহুম ওয়া হুম ফী গাফলাতিন মুরিজুন মা ইয়াতীহিম মিন যিকরিম মির রাব্বিহিম মুহদাসিন ইল্লা ইস্তামাউহু ওয়া হুম ইয়ালআবুন লাহিয়াতান কুলুবুহুম ওয়া আসারুন নাজওয়া আল্লাযীনা যালামু হাল হাযা ইল্লা বাশারুম মিসলুকুম أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج یہ 17 پارے میں سورة انبیاء سے بالکل دونوں کا شروع ہے اور اس کا آرڈر کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 21 بنتی ہے قرآن کی 21 نمبر پہ اور نزول کے اعتبار سے دس از دا 73rd سورت آف دا قرآن یعنی کہ 73 نمبر پہ یہ نازل ہوئی یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں ٹوٹل 122 یعنی کہ 122 آیات اور 7 رکوع ہیں اور اس سورت کی خاصیت کا ذکر آلریڈی پیچھے سورہ اسراء سے سٹارٹ ہوا اور سورہ کہف میں سورہ مریم اور طٰہٰ میں جو آپس میں سملیرٹیز دونوں میں خاص طور سے تھیں اور پھر آگے اس کا ذکر پہلے ہوتا رہا کیونکہ اس سورت میں خاص طور سے وہ ٹاپک ہم نے ایک سارٹ آف جو ایک انیشیٹ کیا تھا سورہ اسراء میں وہ جا کے یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس سورت کے اینڈ میں انشاءاللہ تو اس کی وجہ دیکھیں تو غور کریں شروع میں وہاں پہ بھی پہلے بنو اسرائیل کا ذکر آیا سورہ اسراء میں اور پھر ان کی ڈیٹیلز ان کے جو کچھ ان کے واقعات تھے پھر سورہ کاف میں خاص طور سے ایک ایمفسس بنا کے دوبارہ اصحاب کاف جو کرسچنز تھے اس زمانے کے وہ لوگوں ان کا ایک ذکر آیا اور پھر وہ دو آدمی جو مسلمان تھے اور پھر فائنلی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا جو کہ دوبارہ جو تھے اور پھر فائنلی ذوالقرنین کے قصہ ایک ڈیٹیلڈ اور پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ سورہ مریم میں خاص طور سے کرسچنز کے بہت دوبارہ سے اگین واقعات ریپیٹ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام حضرت طٰہٰ میں ہم نے دیکھا کہ موسٹ آف دا سورت انہی کے بارے میں تھی ان کی جو سٹوری تھی یہاں پہ دوبارہ ان سب کو ایک یاد دلانے کے لیے ایک ریپیٹ کرنے کے لیے ان سب کے اندر جو لیسن تھا جو عبرت تھی جو سیکھنے کی چیز تھی اس کے لوگوں کے دماغوں میں ایک دفعہ ریمائنڈ کرانے کے لیے غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور سے 17 انبیاء کا دوبارہ ذکر کیا ان کی چھوٹی چھوٹی مائنر سٹوریز ان کی ڈیٹیلز اس صورت میں ہمیں ملتی ہیں اور صحیح بخاری میں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں تو عبداللہ ابن مسعود who himself is a very very big and magnificent صحابی ان کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہوگا ڈیفینیٹلی اور لیکن یہ خود فرما رہے ہیں ان صورتوں کو بنی اسرائیل کہف مریم طٰہٰ اور انبیاء ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خاص طور سے فرما رہے ہیں میری ایک قدیم دولت ہے اور کمائی ہے which means کہ this has something very very important ان دی سوراز جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہی اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی پھر اگر ہم غور کریں تو اس صورت میں 6 کے قریب ہمیں کچھ پوائنٹس ملتے ہیں جو جن کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے سب سے پہلے شروع میں فرسٹ غور کریں تو جو دنیاوی زندگی ہے اس کا زوال اس کا اینڈ ہمارا جو ہے قیامت کا ایک طرح سے ٹائم قریب آنے کا ذکر پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یاد دلایا جیسے کہ سورہ اسراء اور خاص طور سے سورہ کاف میں اس پہ بہت زیادہ ایمفسس سمجھ آتا ہے دی اینڈ ٹائمز اور دجال اور اس اینڈ ٹائمز کے واقعات سے تو یہاں پہ اللہ نے پہلے سب سے پہلی آیات میں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون یہ اقتربا دس از اے پاسٹ ٹینس کیونکہ اقتربا یقترب اقترابن یہ ایک عربی گرامر کا ٹینسز ہیں جیسے انگلش میں ہم دیکھتے ہیں ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے ایک پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے ایک فیوچر ٹینس ہوتا ہے اینڈ دس از آبویسلی ایک ورب ہے جو کہ وچ از اے پاسٹ ٹینس کہ وہ ٹائم قریب آ چکا ہے جو یہ پڑھ رہا ہے سورت اسے یہ سمجھنے کے لیے ضرورت سب سے پہلی آیت میں یہ بتائی گئی کہ وہ ٹائم قریب آ چکا ہے حسابہم ان کے حساب کا یہ حساب کتاب کا جزا سزا کا جو دن ہے یہ قریب آ چکا ہے और इसकी बहुत सारी निशानियाँ पीछे सूरतों में, इन्हीं जो चार पांच सूरतें बयान हुई सूरह इसरा से ऑनवर्ड्स, इनमें बहुत सारी डिफरेंट इन निशानियों को हाईलाइट भी किया गया, जो जिनसे पता चलता है कि करीब आ गया है। लेकिन वहूम फ़ी गफलत मौरिजून, ये गफलत में इससे जानबूझ के पीछा छुड़ा रहे हैं, एरास कर रहे हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए लोग खुद कोई ना कोई हीले उसके अंदर बहाने तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अभी तो बहुत टाइम है, ये तो मौलवियों की बनाई हुई कोई चीज़ है, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हर दौर में हर तरह के कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मेजॉरिटी ऑफ़ द मुसलमान भी इसी तरह से एतराज़ कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ख़िताब मुसलमानों को ही है। और एक दूसरी जगह आगे जा के आएगा इंशाल्लाह आयत में, जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया वज़ा करा तल कुरआना जालना बैन का व बैनजीन ला युमिनून बिल आखिरा हिजाबम मस्तूरा, कि जो आखिरत पर ईमान लाने वाले नहीं हैं इनके सामने जब कुरान की कोई आयत आप पढ़ते हैं और बताते हैं इन्हें, तो इनके सामने अल्लाह एक हिजाबम मस्तूरा, एक हिडन वेल, एक पर्दा सा इनके सामने अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हायल कर देते हैं उस आयत और नबी अलैहिस्सलाम के इस जो वो कलाम है कुरान पाक की शक्ल में, ये इन आयतों को और उस बंदे के जो सुनने वाला है जिसके कान में जा रहा है उसके सामने एक हिडन वेल आ जाता है और वो इन्हें सुनने से एराज़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी तरफ एक की गफलत मौरिजून का लफ्ज़ आया कि वो एराज़ जानबूझ के करता है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि बिल्कुल अल्लाह ने आयत नंबर 2 में ही मा याती मिन जिक्र मिन रब्बी मुहदसिन इल्ला इस्तमाऊ वहुम यलअबून, कि ये नहीं आई है इसमें से, ये तो अल्लाह की तरफ से एक जिक्र, यानी कि अल्लाह की तरफ से कोई बात खुद अल्लाह सुबहाना व ताला ने भेजी है। लेकिन ये वहुम यल अबून, ये खेलने कूदने पे लगे हुए हैं, इस पे गौर नहीं करते, इनके सामने एक हिडन वेल है और इन्हें दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता कि कुरान की आयत, ये अल्लाह का कलाम हमसे क्या कह रहा है, क्या फरमाइश कर रहा है। ये उस हिडन वेल की गालबन वजह होती है जो ये सुनने से एराज़ करते हैं। और यल अबून अपने खेल तमाशों में, लाइब यल अबून खेलते हैं खेदने को, हाँ भाई मेरा क्रिकेट मैच है यार, आज तो मैच देखना है, या आज तो बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है, या फलाना एक्स वाई जी, आज तो कोई इटालियन क्लब्स खेल रहे हैं, तो आज तो मेरा टेनिस का प्लेयर है, ये फलाना प्लेयर एक्स वाई जी कोई खेल रहा है, तो आज तो मैच देखना ज़रूरी है। तो खेल या लाबून, ये खेल कूद खेल तमाशे में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, और एराज करने पर लगे हुए हैं। बहरहाल इनके बारे में ख़ास तौर से यहाँ पर एक नसीहत मिलती है, सबसे पहले कुरान बिल्कुल इस आयत सूरत के शुरू में ही, और फिर आगे थोड़ा आगे चल के चलते हैं निशानियां कियामत की बताने के बाद, लक़द आयत नंबर 10 में जाकर लक़द अनज़ल ना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रुम ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून, तुम अकल नहीं करते। ये जो मुशरिकीन थे उस ज़माने में, ये कहते थे कि जो रसूल जिस जो अपने आप का जो दावेदार है रसूल होने का अल्लाह का, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा इंसान ही है, ये कोई यानी कि ये दूसरे अंबिया जैसे जो मौजज़ात होते थे वो तो ये पेश करने से आजिज़ है, ये तो वो नहीं दिखा सकता, हमें कोई मौजज़ा इसके पास है ही नहीं। हालांकि सबसे बड़ा मौजज़ा जो कुरान करीम खुद सामने मौजूद था उस पर वो ईमान नहीं लाते थे। तो इस पर अल्लाह ने इधर ख़ास तौर से इन्हें एक तरह से अफ़ला तअक़िलून, तुम लोग अकल नहीं करते, खाते पीते हो, दूसरे जो इंसानों के तकाजे पूरे करते हो। ये जितने अंबिया थे ये सब इंसानी क्यों के थे, तो ये उसी तरह करेंगे। अगर पीछे गुजरा था इस बात में कि वो कोई फरिश्ता नाजिल कर देते, लेकिन फरिश्ता करते तो फिर ही इसमें हील जद निकालते, तो फरिश्ता है इसलिए ये अमल ऐसे करता है, हम कैसे करें, हम तो इंसान हैं। तो बहरहाल ये एराज़ करने का तो इनका मकसद ही था, और ज़ाहिर है कुरान से बड़ा खुद मौजज़ा इनके सामने कुछ था नहीं, और ये फिर भी जानबूझ कर उसमें अफ़ला तअक़िलून, तुम अकल क्यों नहीं करते, यही अल्लाह ने इसे कहा कि तुम समझते क्यों नहीं हो। बात को समझने के लिए तो सिर्फ वो दिल चाहिए, वहाँ तो दिल के अंदर उस नूर से रोशन होगी जो कुरान है इटसेल्फ। तो इसके बारे में अगर गौर करें, हज़रत एक मशहूर ताबी जो कि ताबी होता है, जिस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द आफ्टर द सहाबा, जिन्होंने डायरेक्ट सहाबा से इल्म हासिल किया होता है, उसमें एक मशहूर ताबी और अरब सरदार थे अहनफ बिन कैस, उनके बारे में आता है कि एक दिन बैठे हुए थे, किसी ने यही आयत पढ़ दी है जो अभी आयत नंबर 10 तिलावत हुई, चूँकि वो खुद एकदम घबरा कर जैसे चौंक पड़े, यानी कि एकदम उन्होंने गौर किसी को करने के लिए तवज्जो अपनी उस तरफ डाली, और इस ये इन्होंने सोचा कि यहाँ पे आ रहा है कि ज़िक्रुकुम फी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, तो कुरान तो ज़ाहिर है सबके लिए नाजिल हुआ है, तो यकीनन इसमें मैं अपना ज़िक्र तलाश करता हूँ कि मेरा ज़िक्र कहाँ है। वो इसी कुरान के पेजेस को आगे पीछे टटोलने लगे और पढ़ने लगे सुबह शुरू से एंड तक, कि जब अल्लाह सुबहाना व तआला इस आयत में कह रहे हैं लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून, कि ये वो किताब है जिसके अंदर तुम्हारा ज़िक्र है, तो ज़ाहिर है कुरान का ख़िताब तो हर इंसान से है। पहले उन्होंने वो आयात पढ़ी अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह ने, जिनके अंदर जो नेक सआदतमंद लोग और बहुत ही अल्लाह वाले और मोमिन लोग थे उनके बारे में जो आयात कुरान पाक करीम में जगह जगह आई हैं, किसी ने सारा माल अपना खर्च कर दिया, कोई पूरी रात बिस्तर से जुदा और अपनी इबादत वगैरह में लगा रहा, या इस तरह के लोगों की एक आयात में निशानियां अल्लाह ने मोमिनों की बयान की हैं, और फिर दूसरी जगह वो आयात उन्होंने पढ़ी जिनमें मुशरिकों काफिरों मुनाफिकों और जो फासिकों और जो गुनहगार और बुरे लोगों के वाक़यात आए हैं। तो उन्होंने ये जब आयात पढ़ी उन्होंने एकदम बोला कि ए अल्लाह मैं इन दोनों ग्रोहों में से नहीं हूँ, यानी कि मैं इतना अच्छा मुसलमान भी नहीं हूँ कि मेरे लिए जन्नत इन तजरीब इन तहती अल्नहार वाले जो वादे जिन कुर्बानियों पे किए गए हैं तो मैं वो भी नहीं करता हूँ, इनके ख्याल में ये समझते थे, और बुरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल काफिर तो मुनाफिक फासिक भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इन दोनों में तो मेरा तस्करा शायद नहीं मिलता। फिर उन्होंने सूरह तौबा की वो आयत पढ़ी जिसमें ऐसे लोगों का जिक्र है जिनसे गुनाह भी हुए और उन्होंने नेक अमाल भी किए। ये आयत करीमा पढ़कर वो एकदम से, यानी कि गुनाह भी हुए और नेक अमाल भी किए, जैसे उस कल भी ये गुजरा था तायबो मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से जो तौबा कर लेता है नेक अमाल कर लेता है, तो उसने तो ऐसे ही है जैसे गुनाह किया ही नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरा तस्करा है, कि यानी कि वो लोग जो गुनाहगार हैं बुरे लोग हैं और फिर कभी नेक अमाल भी कर लेते हैं। फिर अगर हम गौर करें आयत नंबर इस 5 के ऊपर के बल क़ालू अज़गास नहलमु बल बल अफ्तराउ बल हुआ शायरुन इला आखिर आयत के, यहाँ पे जो मुशरिकीन थे इन्होंने बहुत ही कॉमेडिक फॉर्म सॉर्ट ऑफ और एक उस तरह के अंदाज में बहरहाल अजीब अजीब जो ये इश्काल करते रहते थे, उसमें एक ये भी यहाँ पे इसमें समझ आता है कि ये कभी कहते थे ये शायद जादूगर हैं, ये यहाँ पे ये कोई सहर वगैरह करते हैं, कभी कहते थे कि शायर हैं जैसे शायर उन बल हुआ शायर उन यहाँ पे कहा आयत नंबर 5 में, या कभी बोलते थे कि ये जो हैं ये इनका झूठ बनाया हुआ है, जादूगर हैं, मजनून हैं, पता नहीं किस किस तरह के ये करते थे। तो इनके बारे में कुरान में अल्लाह ने ये बातें बयान फरमाई कि ऐ जालिम लोगों ये शायर नहीं है या ये नहीं है, लेकिन इसके जवाब पे अगर गौर करें कि इसका अंजाम जो अल्लाह सुबहाना तआला ने इन लोगों का बताया हमें, वकम कसब नाम इन करियत इन कानत ज़ालिमतन वानशअना बादा कौमन आखरीन के आयात नंबर 11 से लेकर तकरीबन 15 तक इनके ज़िक्र आए कि इन तबाहशुदा कौमों ने जब अजाब इलाही के आसार देखे जिन्होंने ठुकराया था अपने अपने नबियों को, और उनके बारे में हर दौर में ऐसी ही बातें हुई थी, तो अल्लाह ने उन्हें फिर मोहलत नहीं दी। एक दफ़ा जब अल्लाह का अजाब आ गया फिर उन्हें राख का ढेर बना दिया, उन्हें उठा उठा के पटक दिया उल्टा बस्ती से, और फिर उनसे कहा गया कि अब तुम भागने की कोशिश ना करो, इस ऐशो इशरत की तरफ इनसे मतलब ये बाकायदा खिताब करके कहा गया अब वापस लौटो और ये अजाब भुगतो, ये जो ऐशो इशरत बड़ा तुमने किया है और ठुकराया है हक को, इसके ऊपर बाकायदा उनको बुलाकर और इस अजाब का मुस्तहिक बनाया बनाया गया, और फिर बाकायदा इनसे कहा गया कि जिन जो इलाकों में तुम अकड़ अकड़ कर चलते थे वहाँ जाओ, ताकि जब सवाल करने वाले तुमसे नुज़ूल अज़ाब के बारे में सवाल करें तो तुम उन्हें जवाब दे सको। और बाकायदा हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये बात उन्हें इस्तेज़ा और तजलील के तौर पर कही अल्लाह ने यहाँ पे, ये इस तरह की ज़ाहिर है उन्हें रसवा करने के लिए एंड टू पुट देम डाउन, और उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए अल्लाह सुबहाना व तआला ने ये आयात नाजिल की। और फिर अल्लाह ने आगे अगर आयत नंबर 16 पे हम गौर करें तो अल्लाह ने वमा खलकना समाई वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, पीछे पीछे क्यों के किया था, हम या लाबून, ये खेल कूद खेल तमाशे में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पे रिमाइंडर दोबारा दिया कि ये खेल तमाशे के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया था, आसमानों को ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है, वमा बीना हुमा लाइबीन के लिए पैदा नहीं किया गया था, वमा खलकना। तो यानी वो जो खेल कूद खेल तमाशे में लगे हुए हैं, आज लगे हुए हैं लगे हुए हैं, और एराज़ कर रहे हैं अल्लाह की आयात से, जिसके बारे में शुरू में ही एक तंबीह कर दी गई। तो यहाँ से ऑनवर्ड तकरीबन आयत नंबर 20 तक इस तरह से इनको एक वार्निंग दोबारा दी गई। और फिर आगे चलते हैं तो आयत नंबर 21 में अमित तखज़ू इलालिया तो मिनल अर्ज़ी हुम युनशिरून, के मुशरकीन जो कि अल्लाह को छोड़कर जो पत्थरों के बुतों के सामने झुकते हैं, उन्हें एक सॉर्ट ऑफ जिन्होंने अमित तखज़ू इलाहतन, जो जिन्होंने ये ज़मीन में से ही कुछ खुद ही शक्लें बना के और इनकी पूजा शुरू कर रखी है, इन्हें ज़रा डांटने के लिए और इनसे दलील का मुतालबा किया गया कि वाकई ये बुत इबादत की अगर मुस्तहिक हैं तो दलील लेके आओ इस पे। जाहिर है उनके पास कोई इस पे कोई जवाज़ या दलील तो हो नहीं सकती थी, तो जाहिर है वो तो इस पे इससे आजिज़ थे, क्योंकि ये दलील और अल्लाह के अलावा तो कोई किसी की वहदानियत की और सुपीरियॉरिटी की और खुदाई की और रब होने की कोई दलील पेश कर ही नहीं सकता। लव काना फ़ीहा फ़ीमा इलाहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगली आयत नंबर 22 में, कि अल्लाह ने बाकायदा इन्हें एक चैलेंज दिया कि अगर इस दुनिया में दो इलाह होते, दो खुदा होते, दो गॉड्स होते, तो यहाँ फसाद हो जाता। जाहिर है एक कहता, सपोज़ करें एक कहता है अभी दिन होना चाहिए, दूसरा कहता है रात होनी चाहिए, तो इस पे इख्तलाफ हो गया, तो हु विल हैव द अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट वननेस सुपीरियॉरिटी ओवर द अदर। तो जाहिर है ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्लाह ने ये बाकायदा इस आयत में एक चैलेंज उन्हें दिया। और फिर इसके तकरीबन आगे अगर चलते हैं तो इन आयत में तकरीबन आयत नंबर 33 तक हम देखते हैं, ये इनके इनको दलाइल लाने के लिए अल्लाह ने चैलेंज किया, और फिर ज़ाहिर है दलील तो ला नहीं सके। और आगे आयत नंबर 30 पे तक तकरीबन इसी तरह की इनको चैलेंजेस के कुछ और ये बातें चलती हैं, और फिर वहाँ पे जाके हम देखते हैं वजालना फिल अर्ज़ी रवासिया अंतमीद अभी वजालना फिया फिजाजन सुबुल्लाम यहतदून। ये अल्लाह ने 6 के करीब जो दलाइल थे, इन्हें सॉर्ट ऑफ जो अल्लाह के वहदानियत के होने के, खालिक और कादिर उसके होने के, वजूद के, फिर 6 दलाइल भी दिए आगे। कि पहला उसमें ये था कि वजालना फिल अर्ज़ी रवासी, के आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए हैं, और जाहिर है उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उम्मी नबी ये साइंटिफिक रिसर्च कैसे दे सकता है, लेकिन आज के ज़माने में जाहिर है तकरीबन रफली 200 समथिंग ईयर्स अगो की बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 200-300 साल मैक्स जो ये लेटेस्ट बाइनोकुलर्स और फिर जो दूरबीनें और डिफरेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, वो दूर दूर के जो माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी, और आज के ज़माने में तो क्या क्या आ गया है। तो फलकियात और जो माहिरीन जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल कैसे था कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कितना पहले कह दी। और सेकंड बात जो अल्लाह ने यहाँ पे फरमाई कि इन्हें पानी से पैदा किया, हर जानदार चीज़ को अल्लाह ने पानी से पैदा किया, तो इसके अंदर भी एक ज़ाहिर है आज की साइंस इस बात को मानती है कि दुनिया में जितनी भी तख्लीकात हैं वो पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है। कोई भी दुनिया की मखलूक है, चाहे वो कोई इंसान, जानवर, कोई ट्री हो, पौधे, दरख्त हो, कुछ भी हो, ये सब पानी के मोहताज हैं। पानी के बगैर कोई भी लिविंग बीइंग इस दुनिया में वजूद में नहीं आ सकी ना आती है। ये आज की साइंस भी इस बात पे बिल्कुल ऑथेंटिकेट करती है इस दलील को। और फिर थर्ड दलील अल्लाह सुबहाना व तआला ने ये दी यहाँ पे कि हमने वल्लज़ी खलक़ अल्लैल व नहार व शम्स वल कमर कुल्लुन फ़ी फ़लक यसबहून से ऑनवर्ड्स तक दलाइल ही चल रहे हैं। लेकिन तीसरी दलील जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने दी वो ये कि हमने ज़मीन पर पहाड़ बनाए, तो इससे ज़मीन स्टेबल हुई है। आज की साइंस हमें ये बात बताती है, जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने कुरान पाक में 1400 से ऊपर, 1450 के करीब साल हो गए, और ये बात बताई कि आज की साइंस इस बारे में कहती है, जो वॉलकेनोज होते हैं और आतिशफिशां पहाड़ वगैरह होते हैं वो फटते हैं, तो क्योंकि ज़मीन के अंदर भी एक अल्लाह ने सांस रखने की कैपेसिटी ली है, जो उन वॉलकेनोज और उनकी सूरत में वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली गर्मी के मौसम में वुड जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, इसीलिए रेलवे ट्रैक्स के ऊपर हम देखते हैं जी, सर्दी के मौसम में ट्रैक सिकुड़ जाते हैं और गर्मी के मौसम में वो दोबारा फैल जाते हैं, विच इज़ वाई उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि सर्दी के मौसम में वो एक जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगें तो वो आपस में क्रश हो जाएं और ट्रेन चलने के भी काबिल नहीं रहे। तो ये बहरहाल ये आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हमें बताती है, ये उन ज़मीन भी इसी बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की हर तखलीक की तरह सांस लेती है, और ये वॉलकेनोज की शक्ल में अपने उस प्रेशर को एक्सपोज करती है जब, तो पूरी ज़मीन बिल्कुल हिल सकती है और शैकल हो सकती है अगर ये पहाड़ ना हो जो इसे स्टेबलाइज करते हैं। फिर अल्लाह ने ये चौथी दलील बताई कि इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें, और अगर हम देखते हैं कि आप जो लैंड एरियाज़ हैं बड़े बड़े, उन्हें एक तरफ वो हैं अल्लाह के बिल्कुल दूर दूर तक, लेकिन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर भी पीछे सूरह काफ में बात चली थी कि पूरे जो कॉकसस का इलाका हमने डिस्कवर किया था कि उस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक रास्ता था जो साउथ को नॉर्थ से मिलाता था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इन रास्तों को भी बनाया और इनके दरमियान कुशादा वादियाँ और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अपनी जो एक नेचर की जो एक ब्यूटी है उसको सबको यहाँ पे ज़ाहिर है कायम रखा। और फिफ्थ दलील अल्लाह सुबहान व तआला ने जो दी कि आसमान को मैंने एक महफूज छत बनाया, एक स्ट्रॉन्ग, तो सूरज और चांद और जो अपने अपने मदार में तेज़ी से हालांकि घूम रहे हैं लेकिन इनमें कोई आपस में टकराव नहीं है, कोई खलत मलत नहीं होता। जैसे दो तीन मरतबा पीछे एक वो साइंटिस्ट नील डिग्रास की बात चली थी कि ही इज़ स्टिल वंडरिंग विच इज़ ही इज़ सपोजिडली वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे, और ही बिलीव्स के ही डजन हैव एन आंसर फॉर वाई के दुनिया की सारी तखलीकात जो आसमान है और के अंदर जो प्लैनेट्स और ये सब चल रहे हैं, ये इवन दो इतना तेज़ी से ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं लेकिन ये आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग, वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो आसमान एक मजबूत छत अल्लाह ने बनाई जो इस मदार को बिल्कुल उसके तसलसल में रखे, और क्योंकि आखिरी जो फाइनली दलील भी अल्लाह ने इसके बाद नेक्स्ट दी वो भी यही थी कि जो रात और दिन है और सूरज है चांद है इनका ये सब कुल्लुन फी फलक यसबहून, ये सब के सब अपने एक ऑर्बिट के अंदर चल रहे हैं, कोई आपस में टकराता नहीं है। ये सब देखा जाए तो आसमान में कुल्लुन फी फलक यसबहून कि आसमान के अंदर जैसे अल्लाह ने मिसाल दी कि तैर रहे हैं, तो जिस तरह से मछली में पानी में मछली तैरती है, फिश इन अ वाटर, बिल्कुल इसी तरह ये भी पूरे यूनिवर्स के अंदर स्विम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इतनी दलाइल के बावजूद ज़ाहिर है जो इससे एराज करना चाहेगा वो यकीनन ज़रूर ब ज़रूर एराज में ही रहेगा और इससे गफलत में पड़ा रहेगा। वो जैसे कि अल्लाह ने बिल्कुल शुरू की आयात में ये बात पहले ही हमें एक वार्निंग साइन के अंदर बता दी। और फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें 17 के करीब अम्बिया के किस्से, आयत नंबर 48 से अगर हम शुरू करें तो ऑनवर्ड्स 91st आयत तक जाके इन तकरीबन 17 के करीब अम्बिया के किस्से आते हैं। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व ज़ियान व ज़िक्रल लिल मुत्तकीन इला आखिरिल आयात 91 नंबर तक जाके इस 48 से, तो सबसे इन 17 अम्बिया के किस्से ज़ाहिर है इसका मकसद वही अल्लाह की तौहीद और जो उस पे जो जज़ा और सज़ा और हिसाब किताब और इसके ऊपर दलाइल देना ही अल्लाह का मकसद था। और इन 17 अम्बिया में अगर गौर करें, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, लूत, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, फिर अय्यूब, फिर इस्माईल, फिर इद्रीस, फिर ज़ुल्कफ़िकल, फिर यूनुस, फिर हज़रत ज़करिया, फिर याहिया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, इन सब के किस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किए। और इन सब को अगर हम गौर करें, बिल्कुल इन सब अम्बिया के किस्से जो बयान किए, लेकिन एंड में जाके जब ये किस्से ख़त्म होते हैं फिर आयत नंबर 94 पे हम ये देखते हैं कि फ़मन यामल मिनस सालिहाती व हुवा मुमिन फला कुफरान लिसाईही व इन्ना लहू कातिबून, के जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो इसकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। ये क्या खूबसूरत अल्लाह ने अंदाज़ में फरमाया, फ़मैं अमल मिनस्सालिहात, ये नेक अमल करे और वो मोमिन हो, यकीन करने वाला हो, इन आयात को, इन निशानियों को जो यहाँ बयान की जा रही हैं, से एराज करने वाला नहीं हो और गफलत में पड़ा हुआ नहीं हो। ये पहली दो आयात जिसने जो हमें स्टार्टिंग में ही वॉर्न कर दिया था, तो यकीनन उसकी कोशिश ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह उसे यकीनन ज़रूर बज़रूर कामयाब फरमाएंगे। और गौर करने की बात यह है, पहले अगर हम इन अम्बिया को स्टडी करें कि सबसे पहले तो छः अम्बिया के इन आयात में, आयत नंबर 48 से 91 में किससे हमें जो मिले, वो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है उनका वाक़या डिटेल में गुजरा के किस तरह उनके अपने वालिद उन्हें मारने की और धमकियां देने पे आ गए। फिर लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या गुजरा और वो आगे दोबारा भी आएगा इंशाल्लाह, जैसे उनकी कौम ने उनकी नाफरमानी की और किस तरह गलती गलत खुब उस कामों में पड़े हुए थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम की बात आई कि जिन्हें यानी कहें कि शेखुल अंबिया कहा जाता है, उनकी उम्र तकरीबन 950 ईयर्स थी। और फिर दूसरी सूरह काफ में ही सेकंड पार्ट में ही गुजरा था कि इन्हीं की औलादों में से आज पूरी दुनिया में जितने भी इंसानी फॉर्म में लोग, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम, हाम, साम और याफिस की औलादों में से ही हैं। ये सूरह काफ में डिटेल में गुजरा था। इनका वाक़या बयान अल्लाह ने ख़ास तौर से करा। और फिर ये बात आने के बाद दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी ज़ाहिर है आती है। दोनों नबी थे और दोनों बादशाह भी थे। दे हैड द गोल्डन पीरियड ऑफ बनू इसराइल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। और यही आज बनू इसराइल का बिलीफ है, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में दो जगह कहा, इन्नी फ़ज़ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें आलमीन पर, दोनों पूरे सब लोगों पर फजीलत दी थी, दो मरतबा अल्लाह ने फरमाया। और ये इनके बाद भी इनका बिलीफ था कि ये दोबारा टाइम आएगा। और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी ज़ाहिर है, किस तरह से उनकी एक मसाइब पर सब्र करने वाली और तकलीफ़ में भी अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान मानने वाली एक जो तबीयत थी, उनकी जो दुआएं कबूल हुई और उनकी बुराई फिर ख़त्म हुई। और इनका वाक़या आता है। फिर एक यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा टू रिमाइंड, जिनके ऊपर पूरी क्रिश्चियन आइडियोलॉजी बेस करती है, जो उनकी बुक ऑफ जोनास के अंदर बाइबल में, जिसके ऊपर के ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन मिट्टी में रहेंगे और फिर तो कब्र में, और जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे और बाहर आए थे, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन के पेट में रहेंगे और बाहर आएंगे, विच इज़ कॉल्ड रेजरेक्शन, और फिर सेल्वेशन उस बात को मानने में होगी। ये क्रिश्चियनिटी है, टू बिलीव इन के जीसस, ईसस यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, वेंट टू द ग्रेव, वहाँ पे 3 दिन रहे, जिस तरह के यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे और वापस फिर बाहर आ गए जिंदा, ईसा अलैहिस्सलाम भी इस तरह जिंदा बाहर आए, विच इज़ द साइन कि ये गॉड थे। ये उनकी आइडियोलॉजी है। ये बातों को ख़ास तौर से हाईलाइट करने के बाद फिर आयत नंबर 95 और से ऑनवर्ड्स 97 तक अगर हम देखते हैं, तो याजूज और माजूज का किस्सा एक दफ़ा दोबारा आता है कुरान पाक में। ये किस्सा एक दफ़ा सूरह काहफ में, हमने सेकंड पार्ट में इसको बहुत डिटेल में एड्रेस किया। और अगर हम गौर करें सूरह बनी इसराइल, जहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था और हमने बात की थी कि ख़त्म होगा, तो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सूरत बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये वो टॉपिक ख़त्म होने जा रहा है। व हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व कुल्लु मिन हदबिन यंसिलून वक्तरबल वअदुल हक फ़ैज़ा हिया शाख़िसतुन अब्सारल्लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। ये ख़ास तौर से इनका, इनके बारे में एक दफ़ा दोबारा अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बताने की कोशिश की कि दिस हैज़ गॉट सम थिंग्स ऑफ डायर सिग्निफिकेंस, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि इन्हें ज़ुल्करनैन ने एक पीछे कहीं पे छुपा दिया था और बंद कर दिया था एक वॉल के पीछे, ये इस तरफ आने के काबिल नहीं रहे थे। फिर हमने उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा मार्फल करा, कुरान के हवाले से डिटेल्स भी पढ़ी थी कि कौन है क्या है। और लेकिन हम अगर गौर करें इनिशियल यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा, हराम अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, कि हमने एक बस्ती वालों पर हराम कर दिया और हमने उन्हें हलाक कर दिया कि वो कभी वापस नहीं लौटा जाएंगे। तो अक्सर तफासीर वगैरह में इसमें अगरचे ज़्यादातर जो इनके बारे में डिटेल आती है सूरह काफ में ही मिलती है, लेकिन अक्सर तफासीर में इस आयत की जो डिटेल लिखी हुई है वो बयान करना ज़रूरी है कि इससे मुराद ये ली जाएगी कि वो उन हलाक शुदा कौमें जो अल्लाह ने अजाब दे दिया जिनको और उनको हलाक कर दिया, उनके बारे में आयत है कि वो लोग दोबारा ज़िंदगी में कभी लौटाए नहीं जाएंगे। तो ज़ाहिर है बिल्कुल ऑब्वियसली अल्लाह के लिए पॉसिबल है, लेकिन आगे हत्ता इज़ा फुतिहत या जू जू वमा जू जू आ गया आखिर आयात, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस अगर आयत को पढ़ते हैं अगली नेक्स्ट आयत को, हत्ता मीन्स अनटिल इन अरबी ज़बान, हत्ता कि ये उस वक्त तक नहीं होगा, यानी कि ये लोग जो अपनी मुल्क में एंटर होने से या इस दुनिया में आने से जिस चीज़ से भी बैन हो चुके हैं, हराम है इनके लिए आना, हत्ता उस वक्त तक जब तक कि जूज और माजूज के दरवाज़े नहीं खोल दिए जाएंगे। तो गौर करने की बात ये है कि सॉर्ट ऑफ इल्मी बात है, लेकिन एड्रेस करना ज़रूरी है कि पीछे इतनी जो सूरह काफ में इसके बारे में डिटेल आई थी कि ये खोले नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी मुस्लिम शरीफ की और बुखारी शरीफ की उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायात से ख़ास तौर से नबी अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल अरब मिन शर्रिन कद इक्तरबा फ़अताल यौम मिन रदम याजूज व माजूज, और फिर आगे उंगली से इशारा बना के बताया वाफ़ी हल्लकत सीन कि उनकी दीवार में आज सुराख हो चुका है, और यहाँ तक कि ये खोल दिए जाएंगे। यहाँ से ये बज़ाहिर पता चलता है कि कुछ ऐसी कौमें, कोई ऐसे लोग हैं जो अपने वापस रिटर्न होने में अपने मुल्क से बैन होंगे, और उस वक्त तक बैन होंगे कि जब तक याजूज माजूज नहीं खोल दिए जाएं। तो उनके बारे में कौन है क्या है ये सब डिटेल्स तो ज़ाहिर सूरह काफ में गुजर चुकी है, इसमें हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम जो गौर सिर्फ ये कर लेंगे हल्का सा ब्रीफली के अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो आज दुनिया में हम ये देखते हैं हज़ारों सालों की हिस्ट्री को उठा लें अगर किसी भी लिटरेचर में हो, चाहे वो तफासीर में हो, मुहद्दिसीन ने लिखी हो, हिस्टोरियंस के कोई फैक्ट्स हों, कोई डिटेल्स हों, उन सबको अगर हम स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि एक कौम थी जिसे उसी के अपने मुल्क में जाने से अल्लाह ने बैन कर दिया, विच वर द ज्यूज़, जो इसराइल में या ख़ास तौर से बैतुल मुक़द्दस या फ़लस्तीन उस इलाके में जाने से बैन थी, और यही उस वक्त शुरू हुआ काम जब ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने फाइनली सूली पे चढ़ाया, जिसका जिक्र सारा ज़ाहिर है सूरह बनी इसराइल में बहुत डिटेल में गुजर चुका है वहाँ तक, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने सूली पे चढ़वाया इनके अपने रैबाइज ने, उसके बाद से ऑनवर्ड 73 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम के, इन सब को वहाँ से रूमी बादशाह ने निकाला और मार मार के, यहाँ तक के जो क्रिश्चियंस थे क्योंकि वो इन्हें अक्यूज़ करते थे कि ही दे आर इन्होंने ही ईसा अलैहिस्सलाम को मारा। इसके ऊपर रिसेंटली एक बहुत फेमस एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं हॉलीवुड के, मेल गिब्सन के नाम से, उन्होंने एक ये रेजरेक्शन के ऊपर एक मूवी भी बनाई और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर ज्यूज़ ने एतराज़ किया क्योंकि उसमें ही स्टेटेड क्लियर फैक्ट्स। और इसी तरह की बातें अगर हम ये रज़ा असलान की बात चली थी पीछे के, इसकी ये बुक पढ़ते हैं हम द ज़ेलेट, तो इस ज़ेलेट के अंदर भी इसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया हाउ जो अपने रैबाइस थे उन्होंने ही कत्ल किया करवाया बाकायदा साजिश करके, क्योंकि उनकी पावर को ख़तरा होता था, ज़ुल्करनैन पावर के ख़िलाफ़ थे, जैसे अल्टीमेट जो पावर के मिसयूज़ के ख़िलाफ़ थे, जुल्म होने के ख़िलाफ़ थे, उनको सज़ा देने की फेवर में थे ज़ालिम को। और इसी तरह से यहाँ पे भी इनने पावर से उनको जब मरवाने की साजिश की और अल्लाह सुबहाना तआला ने अपने मिरेकल से उन्हें ऊपर उठा लिया, लेकिन ये कौम बैन हो गई, उन्होंने मार मार के इन्हें निकाला, और उसके बाद कभी इन्हें वहाँ पे नज़र आने की भी इजाज़त नहीं थी उस इलाके में पूरे मिडल ईस्ट में। उसके बाद फिर मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दोबारा उस जगह पर कब्ज़ा किया, तो हम देखते हैं कि ईसाइयों ने बगैर लड़े जरूसलम वॉज कॉन्कर्ड एट द टाइम ऑफ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जब वो ख़ुद मदीना से तशरीफ़ ले गए ग़ुलाम के साथ और उनके अपने रैबा जो उस वक्त के क्रिश्चियन जो पादरी वादरी प्रीस्ट्स होते थे उन्होंने निशानियां देखी, उन्होंने कहा हाँ ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि ऐसा एक बंदा आएगा और वो लेगा, और उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से शहर में की चाबियां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा दी कि आप यहाँ आएँ और ले लें हमसे सिटी, मगर जो शरायत रखी वो शर्तों में से एक शर्त ये थी कि यहाँ पर ये अब बनू इसराइल जो होंगे ये कभी वापस नहीं आ सकेंगे। तो उसके बाद ये अग्रीमेंट ऑनर होता रहा यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से जितने भी खुलफा आए, चाहे मेन हुए चाहे ना हुए, बड़े पूरी दुनिया पे हुक्मरान हुए या नहीं हुए, लेकिन इस इलाके में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बनाया था कि यहाँ ये नहीं हो सकता कि हमें इन्हें घुसने ही ना दें, हमें इतनी इजाज़त देंगे, पहले बात आ चुकी है कि बस ये आएंगे यहाँ अपना पिलग्रमेज वगैरह जो इनके मुकद्दस मकामात हैं उन्हीं की ज़्यारत करेंगे, विज़िट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, ये इनका सिर्फ रोल होगा, इतनी हम इजाज़त देंगे इनको, बाकी हम इन्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का आपस में अग्रीमेंट हुआ, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, और फिर उसके बाद वो लोग चलते रहे, इस अग्रीमेंट को ऑनर होता रहा, यहाँ तक कि 1924 1924 में फाइनली जब ऑटोमन एम्पायर के लास्ट खलीफा का हटाया गया और जनरल एलनबी के थ्रू जो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई, और 1917 में जब क्योंकि फाइनली ये लोग पहुँच गए थे, और फिर 24 में जाके वो अग्रीमेंट ख़त्म हो गया मुसलमानों और ईसाइयों का, जो कि तकरीबन रफली कोई 1500 साल 1300 साल बाद जाके हुआ, सॉरी 1300 से 1300 ईयर्स तक ये अग्रीमेंट ऑनर होता रहा, और ये 1300 ईयर्स से पहले जितने 100 साल, यानी कि तकरीबन 700 साल के करीब 73 हिजरी में, यानी ईस्वी में, यानी कि जो सेल्सियस कैलेंडर है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 73 ईस्वी में इन्हें निकाला गया था क्रिश्चियन जो रोमन एम्पायर वालों ने, और उसके बाद इन्हें घुसने की इजाज़त नहीं थी। तो 2000 साल बाद दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से वापस आ गए और ये वहाँ पे रहने लगे? इसका जवाब हमें मिलता है सूरह बनी इसराइल में, जो शुरू में बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ इस बात को इस तरह से कंक्लूड करना मुनासिब होगा कि हत्ता इज़ाफ़ुतियत जुजु व कुल्लु मिन हदम यंसिलून, कि वो हर ऊंची आसमानी से ऊंचाई से नीचे आते हुए होंगे, ये हदब कुल्लु हदब यंसिलून। इसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, जिनका एक मशहूर शेर है कि खुल गए याजूज माजूज के दरवाजे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हर्फ यन सिलून, कि वो दरवाजे अब खुल चुके हैं, देर इज़ नो वॉल, देर इज़ नो कैद कॉम कॉल्ड दिए जो याजूज माजूज, जिसे इंग्लिश में गोग एंड मगोग कहा जाता है, ये इसकी दीवारें तफसीर हर्फ यन सिलून में जाके देखो, तुम लोगों को पता चलेगा ये अब वहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी खुल चुके हैं, ये निकल चुके हैं, और ये हमारे जैसे लोग हैं, हमारे दरमियान रहते हैं। इस पे सूरह बनी इसराइल और सूरह काफ में बहुत डिटेल में बात चल चुकी है, लेकिन जो ना समझे हम जैसे लोग फिर भी, क्योंकि वह शुरू में ही अल्लाह ने कहा था एराज करने वाले होंगे, गफलत में पड़े वाले लोग होंगे, जो वक्त तराबल वादुल हक वहाँ पे आया था, एक तराबल लिन्नास, यहाँ पे फिर दोबारा एक तराबा बलवाद, दोबारा अल्लाह ने फरमाया अगली आयत में, आयत नंबर 97 के अंदर, कि वो वादा करीब आ चुका है। वहाँ पे भी कहा था ये हिसाब हम हिसाब का टाइम करीब आ गया है, आंखें खोलो और गौर करो इन आयत में, वक्त तरा बलवाद यहाँ पे फरमाया आयत नंबर 97 में, वो वादा जिसके बारे में ज़ुल्करनैन ने कहा था, क्योंकि ऊपर किस्सा है उसी याजूज माजूज का दोबारा गुजरा, और ज़ुल्करनैन ने इस बारे में कहा था सूरह काहफ में, हमने गौर किया था, इज़ा जा वादुल हक्की जालहु दक्का वकाना वादु रब्बी हक्का, कि जब अल्लाह का वादा करीब आएगा तो ये दीवार नीचे गिर जाएगी, और अल्लाह का वादा करीब आने की निशानी इससे बिल्कुल अगली आयत में, वक्त अराबल वादु, अल्लाह ने खुद सुबहाना व तआला ने इसी आयत में फरमा दिया। ये एक साइन सॉर्ट ऑफ अल्लाह ने हमें दिया, लेकिन जब ये आएगा तो इसके बारे में एक बात अल्लाह ने ये भी बताई कि मेजॉरिटी जो लोग होंगे उनका क्या हाल होगा, क्योंकि वो इन आयतों में ज़ाहिर है गौर करने वाले लोग नहीं होंगे, ला या तदब्बरून, इसीलिए कहा था पीछे अलफलाया ये तदब्बरून अफलाया अकिलून, अकल नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, इनके इनको तो बार बार झिझोड़ा जाता था, लेकिन ये लोग जो क्योंकि गौर नहीं करने वाले, फ़ैज़ा ही शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीन कफ़रू, इनकी जो आंखें होंगी ये फटे फटे आंखें कर से एक दूसरे को देख रहे होंगे, जैसे हैरत से कि ये क्या हो गया हमारे साथ, कद कुन्ना फ़ी गफलत मिन हाज़ा, हम तो इससे गफलत में पड़े हुए थे। फिर इन्हें अंदाज़ा होगा कि जो सेकेंड आयत में अल्लाह ने कहा था हम फ़ी गफलत मिन हाया, हम फी गफलत मुअरिज़ून, ये गफलत में पड़े हुए हैं और एराज कर रहे हैं इन आयात से, और फिर जब ये इनके सामने इनको उल्टी पड़ेगी, इनके सामने ये हालात वाज़े होंगे, तो ये एक दूसरे से कहेंगे कद कुन्ना फ़ी गफलत मिन हाज़ा, हम तो इस चीज़ से गफलत में पड़े हुए थे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, ये तो हमने बड़ा ज़ुल्म किया, हम बड़े ही ज़ालिमों में से हैं, ये आखिर में अब एक दूसरे से अब ये लोग कहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है पहला काम तो आयात पे गौर करने का था, जो इन्होंने नहीं किया, और फिर आगे चलते हैं तो आयत नंबर 98 में, इन्नकुम मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि ये जो मुशरिकीन और जो इनके बुत वगैरह के बारे में आता है कि ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे, इनके जो जिनको ये पूछते हैं आज, हसबु जहन्नम, ये जहन्नम के लिए इनकी एनर्जी का जो काम का देंगे। और फिर अल्लाह ने फाइनली आयत नंबर 112 के अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो एक قل ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار حق کے حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اس سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور یہ بات پھر غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین اللہ تعالیٰ کے عذاب کا عذاب جب نازل ہوا تو اس سے ہم نے یہ دیکھا، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی احکما بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کر فرما، اور الرحمن المستعان علامہ تصفون. بہرحال آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ سورہ حج سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے، آگے چلنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم استغفر اللہ لا الہ الا استغفر سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.